हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 3 तात्पर्य। कल हमने श्लोक को शब्दों के अर्थ के द्वारा समझने का प्रयास किया था, आज हम श्री प्रभुपाद के द्वारा इसके तात्पर्य के द्वारा समझेंगे। श्री प्रभुपाद जी इसे बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। एक बार हम शुरू से श्लोक उच्चारण करते हैं और फिर तात्पर्य पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतश चातेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोषितकर्तावोऽत्र परमो निर्मत्सराणां स्वधा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापतयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रिद्ध्यवरुध्यते च कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये 3 श्लोक जो कि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में उच्चारण किए हैं, पहले श्लोक में अपने इष्ट को प्रणाम यानी भगवान को प्रणाम, उनकी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण प्रकृति आकृति सबके विषय में बताया, और दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम महापुराण की महिमा के विषय में बताया कि इस श्रीमद् भागवतम में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा इसके विषय में बताया, और यह मंगलाचरण का अंतिम श्लोक जिसमें बता रहे हैं कि हम जो इस संसार में अलग अलग चीजों में रस खोजते रहते हैं, तृप्ति ढूंढते रहते हैं, वो किधर दूसरी जगह पर नहीं है, केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण में ही संतुष्टि तृप्ति और स्वाद है, बाकी सब तो संसार में स्वाद रहित है। तो आमंत्रित करते हैं कि आओ रसिको आ जाओ, अगर आप स्वाद रस का आस्वादन करना चाहते हो तो सारा का सारा रस मैंने इसी भागवतम में रखा है और इसको पियो और मुक्ति पर्यंत पियो, मुक्ति के बाद भी पियो। अनुवाद देखिए। हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो, यहाँ शिशुदेव गोस्वामी के होंठों से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक सुस्वादु हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले दो श्लोकों में यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों का अतिक्रमक करता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है, जिसे हमने पढ़ा ना, धर्म प्रोजित काय तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता, कि इसमें कुछ भी लौकिक नहीं, यानी भौतिक चीजों, भौतिक कार्यकलापों, भौतिक ज्ञान से बिल्कुल परे है। और यही सबसे ज्यादा दिव्य साहित्य है, क्योंकि श्रीवेद्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में इस शास्त्र को लिखा था। इस श्लोक में बताया गया है, अब ये जो तृतीय श्लोक है उसके विषय बताए श्रीपा जी, कि इसमें क्या बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। निगम कल्प तरु कलितम फलम, कि जितने भी शास्त्र हैं उनमें खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, सबका टेस्ट इसी के अंदर है। दूसरे शब्द में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, यानी सार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेश तथा उपदेश को अत्यंत आदर तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। श्रवण करने के लिए बना है यह शास्त्र, तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे श्रवण करना है तो आदर और ध्यान के साथ। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए सारी गीय बातें बताई गई है। इनमें संसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रसायन, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक तत्व तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, सभी का समावेश है। और इनमें से इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। निमित ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों में खाली भक्ति नहीं बताई गई है, जो भी मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से, सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिक्स भी है उसमें, रसायन भी है उसमें, है ना, चिकित्सा यानी कि जो जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है वो रोगों का इलाज, वेदों में हर चीज बताई गई है और भक्ति भी बताई गई। लेकिन बुद्धिमानता क्या है, सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति क्या है कि जान ले कि भगवान समस्त रसों के आकार। यदि भगवान के साथ रिलेशन आपका डिवेलप हो जाता है तो बाकी सारी चीजें आपको स्वतः प्रोवाइड की जाती है, यानी कि उनके लिए आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं 9.22 में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेम सहित सदैव मुझे याद करते रहते हैं, मुझे मेरे स्मरण करते रहते हैं, उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान के साथ जब भगवान के साथ हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो फिर बाकी सारी चीजों को यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, ऐसे लाइन से कर्म करके वहां तक पहुंचाया जाता है। और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति क्या है कि भगवान के साथ, भगवान ही समस्त रसों का आगार है और भगवान के साथ हमें अपना रिलेशन जो है वो निर्माण करना है। इस जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चूंटी तक सारे जीव ज्ञानेन्द्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। संसार में सब ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना। और इनके विषय कौन से हैं? रूप, रस, स्वाद, गंध और स्पर्श। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी यानी जानवरों तक सब लोग चाहते हैं कि अपने इन ज्ञान इंद्रियों से वो रस का आस्वादन करें। अब वो रस यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं कि शास्त्रों में 12 रसों का नाम इस प्रकार से बताया गया है, एक रौद्र यानी क्रोध, 2 अद्भुत यानी आश्चर्य, 3 श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, 4 हास्य यानी मजाक करते हैं प्रहसन, 5 वीर यानी शौर्य जो शक्ति दिखाकर मजा करते हैं, और 6 दया यानी करुणा का रस, 7 दास्य यानी दासता का रस, 8 सख्य यानी दोस्ती या फ्रेंडशिप मैत्री भाव, 9 भयानक यानी भय का रस, कभी हम लोग भय से भी आनंदित होते हैं हॉरर पिक्चर्स देखकर, 10 है भीभत्सय यानी आघात, एक दूसरे को टोंकते उसमें आनंद महसूस करते हैं, और 11 है शांत यानी दासीनता एकदम शांत रहकर, 12 है वात्सल्य यानी मात पिता का स्नेह। तो अलग अलग रसों के विषय में बताया गया है और इन समस्त रसों का सार प्यार या प्रेम है। ये सब करते क्रोध भी, वास्तव में क्रोध भी किस पर आता है? जिससे कोई रिलेशन होता है, जब वो कोई कार्य करता है। अब आपका बच्चा अगर है ना माला नहीं कर रहा है या फिर कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो अच्छा नहीं करनी चाहिए तो आपको गुस्सा आएगा। वही काम दूसरे का बच्चा बिल्डिंग में या फिर नीचे पेट के वो गलत काम कर रहा होगा या माला नहीं कर रहा होगा या फिर स्टडी नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो वास्तव में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये सारे रस जो होते हैं वो प्रेम का मतलब प्यार या प्रेम है। मूलतः प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। अब ये सारे रस वास्तव में क्या है? रियल जो प्रेम के लक्षण है ना वो 5 है। क्या है? शांत भाव से वात्सल्य और मैत्री, शांत दास सख्य वात्सल्य और दाम्पत्य यानी माधुर्य प्रेम। ये वास्तव में ये 5 जो है वो मेन मूल प्रेम के ऐसे लक्षण हैं। अब जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीर, भय, विभस्त्य आदि में प्रकट होता है। उदाहरण, अभी वो 5 रियल जो मूल हैं वो जब प्रकट नहीं होते हैं तो उनके अलग अलग रूप हो जाते हैं। जैसे उदाहरण आते हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ यानी माधुर्य प्रेम हुआ, श्रृंगार रस इसको बोलते हैं, ठीक है। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो जाता है। फिर उसमें जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता है, भय भी होता है और तकलीफ हो रही होती है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम का अंत निशंस हत्या में होता है। क्या होता है? फिर आत्महत्या कर लेता है या फिर दूसरे की हत्या कर देता है। प्रेम जो है वो जब तक पूरा नहीं होता है तो फिर कुछ भी करने के लिए जीव तैयार हो जाता है। इस संसार में इसको प्रेम कहते हैं, वास्तव में ये प्रेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मिसाल से बता रहे हैं कि इस संसार में ये तक हो जाता है कि कोई जिससे असल में ये क्या है, काम वासना है, जो किसी तरह से तृप्त करना चाहते हैं, प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति है ना, प्राप्ति करना चाहते हैं, नहीं हो रही है तो फिर हत्या करते हैं। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के मध्य होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच में हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वह गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव यानी जीव आत्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता है। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। अब इस संसार में क्या होता है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, पशु पशु से प्रेम करता है। अभी आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मनुष्य मनुष्य से ज्यादा जानवर और कुत्तों से प्रेम करने लगा। लेकिन यहाँ पर श्री रूपा जी बोलते हैं आदान प्रदान, कोई भी मनुष्य जो है ना वो कुत्ते से शादी नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। फिर भी अपने लिए रिलेशन जो है ना वो अपने जैसा मनुष्य स्थापित करेगा, किसी गधे के साथ है ना वो इतना प्यार नहीं कर सकता है जितना अपने बच्चों के साथ करता है, या मनुष्य का मनुष्य के साथ होगा और कुत्ते का कुत्ते के साथ या जानवर का जानवर के साथ होगा। लेकिन वास्तव में क्या है, हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठते हैं, इसलिए इस शरीर के जैसा ही प्रेमी मान सोचते हैं, प्रेमी ढूंढते हैं कि उसके अंदर एटलीस्ट मेरे जैसी या मुझसे ज्यादा अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में हम सब क्या है, आत्मा है, और आत्मा के जैसे गुण जो है, यानी कि हम क्या चाहते हैं, सुपीरियर प्रेमी चाहते हैं ना, तो आत्मा से अधिक जो है ना जिसके अंदर गुण है वो कौन है, परमात्मा है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव यानी जीव आत्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता है। फिर क्या होगा कि वास्तविक प्रेम जब स्टार्ट होता है तो जीव जो है वो सांसारिक अपने आप को शरीर नहीं समझता है, सांसारिक प्रेम से उग जाता है और अपने भगवान के साथ अपने प्रेम का निर्माण करता है। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीव तथा परमेश्वर के रूप में पूरी तरह से पाया जाता है। वास्तव में जब प्रेम कंप्लीट होता है तो वो प्रेम वास्तव अपनी वास्तविक शक्ल को इख्तियार करता है, अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, जो कि भगवान और जीव आत्मा के दरमियान जो प्रेम होता है ना उसको, उस वो रियल रस है। बाकी संसार में जितने भी रस हैं वो तो कुरस है, मतलब हेय है, त्याज्य है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए श्रुति मंत्रों में भगवान को समस्त रसों का उत्स कहा गया है, रसो वैस, कि वहीं से सारे रस आते हैं। और यदि किसी को रस का आस्वादन करना है, यदि वो वाकई में चाहता है कि मैं उस रस को अपने जीवन में उतारूं, उस रस को टेस्ट करके देखूं, तो उसे अपने भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण करना होगा। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। वास्तव में आप किसी से प्रेम क्यों करते हो, किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करने का क्या मतलब है कि आप समझते हो, जीव क्या समझता है, मनुष्य या कोई भी जो प्रेम करने के लिए स्टार्ट करता है वो क्या समझता है, इससे प्रेम करने से मुझे खुशी है, मतलब अपने आप को खुश महसूस करूंगा जब वो उसे प्रेम करूंगा। और वास्तविक प्रेम क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब जीव परमेश्वर की संगति करता है, उनके साथ स्वाभाविक रस का आस्वादन, स्वाभाविक मतलब जीव आत्मा है और आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा इटर्नल है तो उसके लिए प्रेमी भी इटर्नल चाहिए, शाश्वत चाहिए, तभी वो सुखी हो सकता है। भौतिक चीजें जो कि विनष्ट हो जाने वाली हैं, जो कि खत्म हो जाने वाली हैं, अशाश्वत हैं, उनमें कोई सुख नहीं है, तो जीव जो सच्चित आनंद घन है उसके लिए सच्चित आनंद घन परमात्मा के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान जब स्टार्ट होगा ना, तभी वो सचमुच में सुखी होगा। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक मूल स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशेष प्रकार से रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मूल रस का पूर्णतः अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस अपने अस्थाई विकृत रूप में रौद्र तथा अन्य रूपों में व्यक्त होता है। अब वास्तविक जो रस है वो जब भगवान के साथ अपने विशेष प्रकार के संबंध को जान लेंगे तभी होगा, लेकिन भौतिक जगत में यह रस जो है वो अलग अलग रूपों में विकृत यानी उस आध्यात्मिक प्रेम का उल्टा अक्ष सिर्फ रिफ्लेक्शन है। इस संसार में कोई भी रियल प्रेम नहीं है। रियल प्रेम तो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हमें दिख रहा है जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं वो उस आध्यात्मिक प्रेम का उल्टा यहाँ पर अक्स है। जैसे मिरर में कैसे नजर आता है, रियल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं इसको आस्वादन करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, सर फूटेगा। उसी प्रकार से इस संसार में भी यदि हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं और उससे जब हम उसको प्राप्त भी कर लेंगे तो भी हमारे जीवन का जो रियल लक्ष्य है उससे ही हम नीचे गिरेंगे यानी सर फूटेगा, जिंदगी और भी निम्नतर दशा को प्राप्त होती जाएगी। आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते, अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंब होते समझ सकता है। यानी कि जिसको ये याद पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि वास्तविक प्रेम कृष्ण से, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है और वो आध्यात्मिक रस को एक बार अनुभव कर देता है तो संसार के जितने भी हैं वो प्रतिबिंब होते समझ के, ये तो उसका प्रतिबिंब है, उसका सिर्फ उल्टा अक्ष है। विद्वान लोग वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं विद्वान लोग, कि इस भौतिक जगत से प्रेम हटाकर अपने प्रेम को भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहते हैं। प्रारंभ में वे परमेश्वर से एकाकार होना चाहते हैं। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मिकवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार के बोध से ऊपर नहीं उठ सकते। यानी कि स्टार्टिंग क्या होती है, वो समझते हैं कि भगवान निराकार है और मुझे उसमें एकाकार हो जाना है, उसी से मुझे परम सुख मिलने वाला है, क्योंकि वो भगवान के साथ अपने रिलेशन को कायम करके जो प्रेम का आस्वादन किया जाएगा ना, उससे ज्यादा उसको पता नहीं होता, उसका रस वो समझ नहीं पाता है। अब किसी के अंदर आप चले जाओ फिर उससे प्रेम कैसे करोगे, और प्रेम के बगैर आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती है। उसे अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए एक साकार रूप का प्रेम ही चाहिए। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्ण आत्मा से एकाकार के बोध से ऊपर उठ ही नहीं सकता वो, इसलिए वो क्या सोचता है, बस भगवान में मिल जाऊंगा तो यही परम सुख है। इस श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त आत्माओं में भी होता है श्रीमद् भागवतम के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्का फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने और मन वांछित आनंद पूर्णतया प्राप्त किया जा सकता है, किंतु उपयुक्त स्रोत से ही यह संदेश सुना जाना आवश्यक है। उपयुक्त संदेश क्या है कि इसको कैसे सुनना है, विनीत भाव से एकदम नम्रता के साथ प्रेम के साथ, और ये मानकर कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वही सत्य है, क्योंकि यह वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है, इसमें कोई त्याज्य शय है ही नहीं, तो जो कुछ है वो पूरा का पूरा सत्य है। हमें समझ में नहीं आ रहा तो भी इसमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, भगवान ने ऐसा किया तो क्यों किया या कैसे किया, नहीं ऐसा किया भगवान ने, ऐसा भी किया, अच्छा भगवान ने ऐसा भी किया, चोरी भी की, वस्त्र भी चुराए, रन छोड़ भी हुए, क्या नहीं कर सकते भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब एक बार मनुष्य को इस भगवान के प्रेम का अनुभव हो जाता है तो फिर वो उसी में आस्वादन महसूस करता है, और किंतु उपयुक्त स्रोत से ही संदेश को सुनना आवश्यक है। इसकी
सतर्कता बरतनी होगी, यानी कि इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं हम इसके किसी संदेश में संदेह तो नहीं कर रहे। श्रीमद् भागवतम को उपयुक्त स्रोत से ही यथा रूप से ग्रहण किया जा सकता है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद, अभी उपयुक्त स्रोत एक यहाँ पर ये भी बताया कि किस तरह से आया, परंपरा से, जिस तरह हम सुन रहे हैं ना वैकुंठ से, कैसे यहाँ पर बताया कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा में यथा रूप, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इसे वैकुंठ से ले आने वाले नारद मुनि हैं जिन्होंने इसे अपने शिष्य वेद व्यास जी को, यानी भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया और नारद ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को प्रदान किया। श्री वेद व्यास जी ने इस संदेश को अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त जीव थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त हो गए थे और जन्म के पश्चात उन्हें इस किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पड़ी, यानी कि वो पहले से ही मुक्त थे। शुकदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं। अभी हम आगे चलेंगे तो उसके जन्म की पूरी कथा आएगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आज तात्पर्य समाप्त करें तो उसके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया वो माता के गर्भ में ही मुक्त थे, मुक्त जीव हो गए थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ से जब बाहर आए थे तो उन्हें कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से योग्य होता है, किंतु पूर्णतया मुक्त जीव होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए किसी प्रकार के विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्णतया मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती। अब जब वो पैदा हुए थे तभी उनको किसी भी भौतिक चीज में कोई आसक्ति नहीं थी, वो पैदा हुए थे वो माता के गर्भ में ही थे, 12 साल तक वो माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको ज्ञान था कि संसार जो है वो मोह माया से भरा हुआ है और जब मैं बाहर आऊंगा तो कहीं वो मोह माया मुझे अटैक ना कर दे। जब वेद व्यास जी ने, उनके पिताश्री ने उन्हें ये वचन दिया कि भौतिक मोह माया तुम पर अटैक नहीं करेगी, तुम आओ बाहर, फिर वो जब जन्म दिया उन्होंने तो अपने माता पिता को देखा भी नहीं। 12 साल का बच्चा पैदा हुआ था तो 12 साल उसने जैसे ही अपनी मतलब बाहर आया, नाफ जो है ना उसकी अलग की गई और नाफ को गले में इसे लटकाया और आगे निकल गए, ना कुछ भी पहना वहना नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत मतलब इतना उनके अंदर वैराग्य था कि संसार की किसी भी चीज में उनका आकर्षण नहीं था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने भगवान के इन पवित्र वचनों को सुना, भगवान के इन शब्दों को सुना, भागवत महापुराण के इन श्लोकों को सुना, तो वे भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, यानी कि मुक्त थे, उनको किसी चीज में कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन यह जो भागवत महापुराण जो है वो मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, इसलिए मुक्त जीव भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को सांसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षण करने लगती हैं। अब भौतिक लोग जो है ना वो ज्यादातर भगवान की इन लीलाओं में आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन भक्त जो मुक्त जीव होंगे ना वो, उनको भले ये श्रीमद् भागवतम कितनी बार भी सुनाएंगे ना उनको आकर्षण लगेगा। तो जो जिनको श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्लोकों में शब्दों में आकर्षण है तो वो कोई साधारण जीव आत्मा नहीं है, वो वाकई में अपने पुराने जन्मों में बहुत बहुत अच्छे पुण्य कर्म करके आए। तभी बोला ना कृति भी शुश्रुषु भी, इसको सुनने के लिए आपने बहुत मेहनत की है और आज हम सबको भगवान की कृपा के रूप में ये श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये सब आध्यात्मिक लोगों को, जो मुक्त लोग हैं उनको ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्त भक्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे, देखो ये बात हमें समझ लेनी, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले ही ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा देनी है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान किसी भी दृष्टि से निराकार नहीं। यहाँ पर बता दिया, वैसे तो भगवान के तीन फेज हैं, जिसमें भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका एक साकार रूप है जिससे ही ये सब परमात्मा और ब्रह्म रूप निकल रहे हैं। वो निकल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो भगवान उनका एक वास्तविक स्वरूप है, वो साकार रूप, क्योंकि दिव्य रस की निष्पित यानी कि दिव्य रस का आनंद केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। आप निराकार से क्या प्रेम की उपेक्षा कर सकते हो, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है वो तुम्हें क्या प्रेम देगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसी बात तो कभी करनी नहीं चाहिए भगवान के विषय में कि वो निराकार, इससे तो उसके साथ किसी का प्रेम का संबंध स्थापित होने का कोई सवाल ही नहीं होता, निराकार से कोई क्या प्रेम करेगा। आगे है श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबंध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार विषय वस्तु सभी वर्ग के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्त आत्मा हो या परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हो। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रमबंध यानी स्टार्ट से लेकर बताया है ऐसे भगवान के विषय में। तो फिर चाहे मुक्त आत्मा हो चाहे तादात्म्य होने की इच्छा करने वाले हो, जो भी हो, अगर वो वाक्य में सीरीज में इस तरह से क्रमबंध श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे तो उनको अवश्य जीवन के लक्ष्य का पता चलेगा और उसको अवश्य ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी। ये शास्त्र जो है वो बहुत ही परम अट्रैक्टिव है यदि कोई इसको वैधी तरीके से यानी कि सीरीज में सुनता है। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता होता है। अब यहाँ पर हम पढ़े ना शुक मुखाद अमृत चव संयुतम। अब तोते के विषय में बता रहे हैं कि शुक का मतलब तोता होता है, जब कोई पक्का फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल ज्ञान में प्रौढ़ तथा पक्व है, यह श्री सुखदेव गोस्वामी के होंठों से निकला है जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्ग को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। अब तोते के दो गुण होते हैं, एक तो क्या गुण होता है, वो एज इट इज बोलता है। जैसे आप बोलोगे ना, जैसे आप उसको बोलोगे राम तो बोलेगा राम, आप बोलोगे जो भी बोलोगे ना तो वही बोलेगा, आप उसको बोलोगे मिट्ठू पुट्टा चवराम तो वो भी आपको बोलेगा मिट्ठू पुट्टा चवराम, ऐसे नहीं बोले, मतलब अपनी अक्कल यूज नहीं करेगा कि मैं मिट्ठू पुट्टा हूँ वो तो मिट्ठू पुट्टा नहीं है, यानी कि एज इट इज बोलेगा। लेकिन उसके अंदर एक दूसरी क्वालिटी है कि वो जब पके हुए फल को टेस्ट करता है ना तो उसको और भी ज्यादा टेस्टी बना देता है, एक ये भी। लेकिन हमारे पास साहित्य नहीं, हमारे पास फल है। अब वो वर्ड्स को एज इट इज बोलता है लेकिन फल को और भी टेस्टी करके दे देता है। तो हमारे पास अभी श्रीमद् भागवतम क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, तो ये तो फल है। अब फल को जब शुक ने टेस्ट किया, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो ये अमृत की तरह मीठा करके उसने हम सब तक पहुंचाया है, इसीलिए वो सबको बहाने वाले के रूप में प्रस्तुत हुआ है। श्री सुखदेव गोस्वामी के होंठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह इसके दिव्य रस का स्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। अभी संसार में क्या है, विकृत है, रस सारे हैं, ये क्रोध हास्य ये सारे रस है प्रेम का, रहस्य माधुर्य और वात्सल्य, लेकिन ये सब विकृत हैं, क्योंकि वास्तविक रस जो है वो रसो वैश्य, जहाँ से रस प्रकट होता है उसी के साथ प्रेम का निर्माण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सांसारिक सारे रस जो है वो उसका उल्टा अक्ष है, तो ये प्रतिबिंब से हम स्वादिष्ट स्वाद नहीं ले सकते। अब आईना है जिसमें आपको अक्ष नजर आता है, उसमें आईने में आपको कितनी ही स्वादिष्ट चीजें जब सामने रखी होंगी, आईने में तो दिखेगी ना, लेकिन उससे आप स्वाद ले सकोगे? जैसे आप किसी को अगर है ना कोई भी बहुत ही सुंदर स्वीट डिश किसी ने बना के रखी हो, रसगुल्ला हो या खीर बना के रखी हो या कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है वो सामने रखी हो, और आईने में आप उसको जैसे उसके अक्स के साथ उसका स्वाद लेना चाहते हो, तो क्या संभव है? नहीं ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर वो रखी हुई है। तो यहाँ इस संसार में सब कुछ प्रतिबिंब है, जितने भी रस हम महसूस करते हैं हमको, अब यहाँ पर तो पहले ही भगवान बता दिया, पहले भगवान वेदव्यास जी ने कह दिया, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोहयंती यत सूरय, भगवान की माया से तो बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। हम जैसे क्षुद्र जीव अगर मोहित होते तो बड़ी बात नहीं है, कोई बोलेगा, कोई सुनते हुए भी उनको लगेगा ये क्या बोल रही है कि संसार में है ना सब कुछ उल्टा है, सब कुछ भी रियल नहीं है। तो अगर कोई साधारण जीव ऐसा बोलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है कि संसार में जो कुछ भी है वो वास्तविक रस का विकृत स्वरूप है, उल्टा प्रतिबिंब है, उससे कभी भी आप आनंदित नहीं हो सकते। और इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं वह जो आध्यात्मिक आस्वादन है वो इन भौतिक रसों के विकृत रूप से बिल्कुल भिन्न है, एकदम अलग है। यह पक्व पल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं अटपका है, यहाँ पर बता ना कि वो डायरेक्ट से नहीं आया है, ये ऐसा अगर डायरेक्ट से टपक जाता तो खराब हो जाता। और आगे यहाँ बताया प्रत्युत यह शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता है, हमने कल पढ़ा था ना, जैसे पहली डाल जो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी के बाद नारद शाखा, जहाँ पर दूसरी शाखा पे नारद जी बैठे हुए थे, और नीचे कौन बैठे थे नारद जी के बाद? वेद व्यास जी, उनके बाद सुखदेव गोस्वामी, ऐसे करते हुए परीक्षित तक, और परीक्षित के बाद सूत गोस्वामी तक, और सूत गोस्वामी के बाद हम तक ये ज्ञान पहुंचा है। और हम तक ये श्रीमद् भागवतम हम तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य है, जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। हम जन्म जन्मांतर तक हमारी पीढ़ियां जो है वो श्री ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के इस उपकार को नहीं भूलें, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया, लेकिन उसके बाद इतना ही ज्यादा विस्तृत और इतना ज्यादा मीठा, इतना ज्यादा अच्छे तात्पर्य के साथ, इतने हमें श्री प्रभुपाद जी ने अगर नहीं समझाया होता और उनके शिष्यों द्वारा हमने नहीं सुना होता तो हम समझ ही नहीं पाते इस शास्त्र को, ना ही कभी पढ़ने के योग्य होते। तो हमें हमारे ऊपर श्री प्रभुपाद जी की बहुत असीम कृपा है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रत्युत यह शिष्य और परंपरा की श्रृंखला से आता हुआ होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं, उसके अंदर कुछ डाला नहीं गया, कुछ निकाला नहीं गया, एज इट इज मनुष्य तक पहुंचा है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार प्रस्तुत किया है। ऐसा कोई लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से ना बताते हैं, इससे पता है क्या होता है? श्री रूपा जी बोलते हैं कभी भी हमें डायरेक्ट से रास लीला या भगवान के दिव्य कृष्ण के पास टाइम के बदले में या जो दिव्य लीलाएं है ना भगवान की, उनके विषय में डायरेक्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए, लाइन से पढ़ना चाहिए। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया ना, वरना तो भयंकर अपराध होता है। भक्ति में उन्नति के बदले में भक्ति में और भी गिर जाता है और जिन्होंने फल इस फल को दिव्य अनुभूति के अनुसार प्रस्तुत किया। अब दिव्य अनुभूति का क्या मतलब है? आध्यात्मिक उन्हें जैसा मतलब भगवान की तरफ से जैसा भी उनको अनुभूति हो रही थी उस वे में इसको बताया। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी ही सावधानी से किया है। सुखदेव गोस्वामी ने हर विषय को बहुत ही सावधानी से बताया। ऐसा भगवान के चरणों में कोई अपराध नहीं होगा अगर हम उनके अनुसार ही इसको पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम किसी ऐसे व्यक्ति से समझना चाहिए जो श्री सुखदेव गोस्वामी को पूर्ण प्रतिनिधित्व, एज इट इज जैसा उन्होंने बताया हमको ऐसा ही ऐसा बताना है। ऐसा व्यवसायक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते पैसे लेते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने के लिए भी पैसे लेते हैं और फिर धंधा बना दिया अपना। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति कभी भी वास्तव में ये जो श्रीमद् भागवतम का उपदेश है ना वो करुणा से होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि सुखदेव गोस्वामी ने करुणा में भर कर बहुत ज्यादा उनके हृदय में परीक्षित को देखकर, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी 7 दिन के बाद, तो उनके हृदय में इतनी इतनी करुणा हो गई उनके प्रति कि कैसे मुक्ति होगी बेचारे। मतलब ऐसा लगा कि मनुष्य ने यदि कृष्ण लीला नहीं सुनी तो कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध निर्माण नहीं होगा, और यदि कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध निर्माण नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन का लाभ नहीं होगा। मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है कि हम इसमें अपने भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण कर सके। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये करुणा उत्पन्न हो जाए ना कि मुझे दूसरों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना है, तो वो सही तरह से बता सकता है। लेकिन जो अपना व्यापार समझकर इसको चलाना है, अपना धंधा समझकर, तो वो तो अपनी तरफ से इसमें क्या करेगा, ग्लैमर डालेगा। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया ना वैसा नहीं, अब वो क्या करेगा, पब्लिक डिमांड को देखकर विषय वस्तु को चेंज करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी सावधान करते ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसे नहीं सुनने चाहिए इनके लोग के पास जाकर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा करने के लिए चला रहे हैं इस सबको। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्यतः रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाते लगाते लगाने लगते हैं, यानी कि वो जो सीक्रेट जो है ना उसमें वो डायरेक्ट से पहुंच जाते हैं रास नृत्य के क्रमिक यानी कि सीरीज में सारा थोड़ी बताया। अब 7 दिन में को क्या बता जाएगा, शुरू के 2-4 अध्याय बता दिए, फिर बीच में आ गया और डायरेक्ट से 10 स्कंद में रास। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि और मूर्ख लोग इसका बुरा अर्थ निकालते हैं, क्योंकि इससे प्रेम स्थापित नहीं कर पाते बल्कि और भी गलत अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग इसे नैतिक बताते हैं, अन्य लोग अपनी धूर्त व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालते चलते हैं। उनमें श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती। वो ये नहीं सोचते कि मुझे जैसा सुखदेव गोस्वामी ने बताया है उस हिसाब से बताना है। कुछ कोई पॉलिटिक्स तरीके से बता देता है, कुछ किसी तरह से अपनी गलत गलत व्याख्याओं के हिसाब से बताए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण सिर्फ उसी के द्वारा सुनना चाहिए जो आपको एज इट इज बताता है, उसके अंदर से कुछ निकाले नहीं और आपको सीरीज में सारा का सारा बताए। इस श्रीमद् भागवतम महापुराण के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि समय कितना लगेगा, ये सोचना चाहिए कि ये शास्त्र ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और इसी के द्वारा मेरे प्रेम का निर्माण होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए जिन्हें दिव्य ज्ञान का अल्प ज्ञान है किसी मनमानी ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया, यानी कि उन लोगों की तरह नहीं बताया जो बस ऐसे ही लोगों की तुष्टि यानी कि बस लोगों को कैसे खुश किया जाए उसके लिए अपनी मर्जी से बता दिया, ऐसे नहीं, सुनियोजित ढंग यानी सीरीज में बताया है। और श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत ही वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से के मुख से निस्सृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। इसको श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी ने इतने अच्छे तरीके से रचना की है कि सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलते हुए किसी प्रतिनिधि यानी उन्हीं की शिष्य परंपरा से आए हुए किसी भक्त के जरिए यदि वो सुनता है, उनके मुख से जरिए सुनता है, तो उस अमृत का पान करके उसका रियल आस्वादन कर सकता है, उस अमृत को चख सकता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। इससे हमने क्या समझा? अब देखो ये तीन श्लोक जो है वो मंगलाचरण के हैं। उससे हमने क्या समझा है कि शुरू में भगवान केवल कृष्ण है, जो कुछ भी है ये सब उनकी माया है जिससे हम सब मोहित होते, बड़े बड़े देवता भी मोहित होते, लेकिन भगवान स्वयं इस माया से ऊपर अपने धाम में रहते हैं जहाँ पर इस माया का कोई असर नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस श्रीमद् भागवतम में कुछ भी कैतव नहीं है, सब जो भौतिक विचारधाराएं हैं उनको अस्वीकार किया गया है और वास्तव में जो वैद्य वस्तु है, वैद्य वास्तव मात्र वस्तु शिवदा, जिससे आपका कल्याण होगा और समस्त तापों को खत्म करने वाला है, वो यह शास्त्र है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम महामुनि वेदव्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है तो फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? भगवान से प्रेम का निर्माण करना। और यह शास्त्र तो ऐसा है, तद्यो ऋद्य वरुद्य तेतकृति शुश्रूषु भिस्तक्षण, उसी समय आपका भगवान के साथ प्रेम स्टार्ट हो जाता है जब आप केवल सुनने की इच्छा करते हो। और आज मंगलाचरण के अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा कि यह वैदिक खलपत्र वृक्ष का पका हुआ फल है जो शुक मुखात अमृत द्रवसौनतम, शुक मुनि के मुख से आस्वादन किए जाने के वजह से बहुत ज्यादा और भी ज्यादा सुस्वादु हो गया है। तो किसी ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही यदि हम उसको सुनेंगे और क्रमिक हम इसको सुनेंगे तभी हम इसका सही आस्वादन कर पाएंगे और इससे निश्चित अमृत रस का पान करके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये मंगलाचरण के तीन श्लोक आज हमने समाप्त किए। कल से वास्तविक जो श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा जो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मिलकर यज्ञ करने के लिए बैठे हैं और सूत गोस्वामी आएंगे, कल से वो रियल स्टोरी स्टार्ट होगी। आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि इन तीन श्लोकों में बहुत समय लिया मैंने आपका। अब हम इतना लेंदी लेक्चर नहीं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्णा।